ক্রিস্টান বিশ্বাস মানে বালে সমাহ अपने परमाराध्य नित्य लीला प्रवेशों विष्णु पाद की प्रज्ञा के महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा दंडों सनती ज्ञापन करता हूँ। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए आए। मैं लगभग 50-60 वर्षों से मैं यहाँ आता हूँ। पहले तो यहाँ एक एक महीने में भी ठहरा हूँ। सत्य में गोपीनाथ गोविंद जी राधा दामोदर राधा माधव चैतन्य महाप्रभु इत्यादि सबका यहाँ हमने दर्शन किया, किंतु कभी प्रवचन करने के लिए नहीं आए। अभी यहाँ के जयपुर के भक्तों ने हमें आग्रह किया कि आप 500 दिन वहाँ पर प्रवचन दें। मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुझे गोविंद जी के गोपीनाथ जी के दर्शन करने के लिए भी गए हैं और प्रचार प्रवचन के द्वारा राधा कृष्ण का गुणगान करूँगा, इसलिए मैं यहाँ उपस्थित आज विजन न होने की वजह से कुछ असुविधा हुई। ठीक समय पर हम अपना प्रवचन आरंभ नहीं कर सके, इसे कुछ विलंब हो गया। कल से हम लोग ठीक समय पर हम लोग प्रवचन आरंभ करेंगे। आज आपके संबंध में आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ, जिनका दर्शन कर रहे हैं वो गोपीनाथ हैं कौन? दर्शन तो करते हैं, क्योंकि जब तक उनका तत्व नहीं मालूम हो जाए हैं कौन, तब उनमें प्रीति नहीं अधिक हो सकती। उनको गए दुर्गा काली के समान ही के देवता समझेंगे और उनसे वही मांगे जो गणेश से शंकर जी से इंद्र से कुबेर से जो मांगते हैं वही उनसे मांगे। आप था भी नहीं, इसलिए इनका सबसे पहले समझ में आते ये वृंदावन में जसोदा मैया के घर से प्रकट है। मथुरा में जो प्रकट थे वो वासुदेव नंदन वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण के रूप में आए। अधिक कुछ नहीं, वो गोपीनाथ जी से अलग है, वो गोपीनाथ जी से निकले हैं। गोपीनाथ तो भजन नंदन है, श्याम सुंदर है, कुछ और अधिक है। जसोदा मैया के घर में आकर उन्होंने सबसे पहले प्रकट होकर के पूतना राक्षसी का वध किया, जो अपवित्रता है। पूतना पवित्र और पूत माने पुत्र, पुत्र भी नहीं, वो तो बाघों का मांस खाने वाली, रक्तपान करने वाली, बड़ी दुराचारिणी असु थी। किंतु कृष्ण कैसे दयालु कि वो देश बना करके माता का स्थाई और कृष्ण को अपने तन का रूप खिलाने का बहाना बनाकर उसे बीज पान कराए। और कृष्ण ऐसे जो उसको धात्री पूजित गति माता जैसी गति उसको गोलोक में सदा के लिए दे, ऐसा दयालु को छोड़कर के कौन किसका भजन करे। और लोग ये नहीं दे सकते, कोई भी भगवान के अवतारे नहीं दे सकते जो कृष्ण दे सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने तृणावर्त का व्रत किया, सप्तर्षि का वध किया, उनका भी उद्धार किया। पुनः दामोदर लीला में यशोदा मैया के लाभ से आते दामोदर के लिए यशोदा मैया ने उनके कमर में रस्सी बांधी, रस्सी नहीं प्रेम से उनको बांध दिया। यशोदा जी के अतिरिक्त कौशल्या जी राम को नहीं बांध सकती, नारायण को कोई नहीं बांध सकता, द्वारकाधीश को भी कोई नहीं बांध सकता। और यशोदा मैया अपनी गोदी में नहीं लेती है, उसे शासन करती है, तुझे गोदी में नहीं लेती। क्यों? तुम बड़े नटखट हो, तुम चोर हो, धूर्त हो इत्यादि करो। यशोदा के अतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता है? यशोदा के लड़किया के डर से उनके आंखों में आंसू आते हैं, वो रोते हैं तकलीफ में। इस तरह से उन्होंने लीलाएं की। इसके बाद में ब्रज में आए, वृंदावन में, वहां पर और लीलाओं के साथ में अंत में उन्होंने रास लीला की। उस वो लीला ऐसी कि चंद्र न जाने कितने युगों तक एक स्थान में रहा उनकी लीला को देखने के लिए। अंत में उन्होंने कंस को मारने के लिए मथुरा में आए, कंस को भी मारा, फिर द्वारका आए, द्वारका से आकर के वहां पर उन्होंने शादियां की 16,108 महीनों से। तत्पश्चात महाभारत युद्ध में असुर स्वभाव के लोगों को उन्होंने दंड किया और इस प्रकार से धर्म की प्रतिष्ठा की, गीता का ज्ञान सुनाया। इसके बाद में अपने लीला को संपन्न कर लिया, वो लोग वृंदावन में पहुंच गए। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी जी आए और वहां पर श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ की। इस तरह से भागवत के प्रवचन का रास्ता मार्ग साफ उन्होंने किया। आज जो श्रीमद् भागवत ये सुन रहे हैं, ये भगवान का ही स्वरूप है, जो कृष्ण स्वयं नहीं दे सकते अभी बतलाया, ये सुखदेव गोस्वामी जी दे सकते हैं, उन्होंने दिया। जब उनकी लीला समाप्त हो गई, उस समय में बद्रनाथ जी उनके वंश में थे, और उधर में पांडवों के वंश में परीक्षित महाराज थे। परीक्षित महाराज जी बड़े थे और अपने बेटे की तरह इनको मानते थे, बद्रनाथ को। परीक्षित महाराज जी ने इनको द्वारका से लाकर मथुरा में इनका राज्य अभिषेक कराया और फिर सांडिल्य ऋषि के अनुगत्य में स्वयं ब्रज को प्रकाश करने के लिए आदेश दिया। 5,000 वर्षों के बाद में कृष्ण जन्म के बाद में वृंदावन वीरान हो गया था। कोई नहीं जानता था कि राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है। तो इस चीज को फिर से ब्रज को प्रकाश करने के लिए बद्रनाथ जी ने वृंदावन में गोविंद जी, गोपीनाथ और मदन मोहन की विग्रह स्थापित किया। सबसे पहले वहां पर उन्होंने गोपीश्वर महादेव की भी मूर्ति स्थापित की। इस तरह से गोवर्धन में उन्होंने हरदेव जी को, जितने भी कृष्ण की लीला स्थलियां हैं वहां पर या तो कुंड बनाया या वहां पर मंदिर बनाए, चरण चिन्ह इत्यादि स्थापित की। इस प्रकार से सारे ब्रज को उन्होंने प्रकाश किया, किंतु उनके अप्रकट होने के बाद में भी बहुत वर्षों के बाद में थी वृंदावन वीरान। यवनों का उत्पात बढ़ने लगा और उनके उत्पात से पुजारी लोग ठाकुर जी को लेकर के गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन और दूसरे विग्रहों को कहीं छिपा करके कुंजों में रख दिया, कहीं इधर खा दिए, कहीं सरोवरों में डाल दिया। इस तरह से जब भी वृंदावन वैसे ही वीरान हो गया तो चैतन्य महापुरुष ने बताया ये महापुरुष जी हैं कौन, स्वयं गोपीनाथ ही हैं, गोविंद जी ही हैं, कृष्ण ही हैं। विशेष कार्य से राधा जी का सौंदर्य और उनके भावों को लेकर इस जगत में कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। कौन सा साधन करके हम कृष्ण को ब्रज में पा सकते हैं, इसके लिए स्वयं साथ आए, इसके लिए अपने परिवार रूप गोस्वामी को भी अपने साथ ले आए जिन्होंने बहुत से ग्रंथ इत्यादि लिखे। इसके बाद में हम लोग जान सकते हैं कि ये राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद जी हैं कौन। ये गोपीनाथ जी के लिए कहे हैं, श्रीमान रास रसारंभी बंसी बढ़ कथन बेंग स्मरई गोपी गोपीनाथ। हमारा कल्याण करे गोपीनाथ कौन, वृंदावन के शरद पूर्णिमा ने बंसी बजाई। किसलिए बंसी बजाई, गोपियों के लिए बंसी बजाई। उनकी इच्छा हुई मैं रास विलास करूं। कृष्ण वैसे तो उनके अतिरिक्त और कुछ है नहीं, आत्मा राम और आत्मा आप तो काम दोनों हैं। ऐसी कोई उनकी इच्छा नहीं जो पूर्ण न हो, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। किंतु जसोदा मैया को खिलाने की इच्छा होती है तो वो भूख लग जाती है। जब कृष्ण दुर्योधन की राजसभा में पहुंचे और युद्ध बंद हो इसके लिए प्रयास करने के लिए गए, उस समय दुर्योधन ने इनका बड़ा सम्मान किया। दुशासन के स्वर्ण के महल में इनको सहराया, मेरे मिश्री इत्यादि सब उनके सामने उपस्थित किए खिलाने के लिए। किंतु कृष्ण ने क्या कहा, देखो भैया पहले तो मुझे भूख नहीं इसलिए मैं नहीं खा, दूसरी बात जिस काम के लिए माया आया, युद्ध में संधि हो जानी चाहिए वो तो हुई नहीं, आपने मेरी बात नहीं माना, इसलिए जब मेरा काम नहीं हुआ तो मैं खा नहीं सकता। तीसरी बात यदि भूख नहीं रहती है, प्रेम रहता है तो आदमी खा लेता है, तो तुम्हारे अंदर में प्रेम ही नहीं है इसलिए तुम्हारे घर में नहीं खा सकता। किंतु जब वहां से निकले हैं बिजुर के घर में गए, बिजुरानी तो थी, बिजुर तो थे नहीं, बिजुरानी थी, वो युद्ध से पहले ही निकल गए थे दुर्योधन के अपमान करने से। वो समझ गए थे ये वंश का वंश होगा, केवल बिजुरानी थी, बिजुरानी प्रेम में पककर कृष्ण को बैठाया, कृष्ण को भूख लग गई और केले के छिलका खिलाने लगी और उसका साथ हाथ फेंकने लगी। कृष्ण बड़े प्रेम से मस्त होकर के आरोप रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या, रुक्मणी सप्तभामा और सारी रानियां मिलकर के जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट अन्न बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, मुझको प्रिय नहीं लगती है, आज ये जितने थे कृष्ण को प्रेम से मिल गए, उनको भूख तो नहीं, जहां प्रेम मिला वहीं पर उनको भूख लग जाएगी, तो इसलिए प्रेम के भूखे हैं और किसी चीज के भूखे नहीं। तो ये कृष्णचंद्र जी वहां पर नहीं खाए और विदुरानी के केले के छिलके खाए। उसी तरह से ब्रज में एक ऐसी चीज है जो द्वारका में नहीं, बैकुंठ में नहीं, अयोध्या में नहीं है, दारावती में नहीं है, मथुरा में भी नहीं, वो क्या चीज है? ब्रज के लोग उनको भगवान नहीं जानते, कोई भी मथुरा में उनको भगवान समझते हैं, द्वारकापुरी में भी भगवान समझते हैं, मथुरा में जन्म ही लिया शंख चक्र गदा पद में लेकर, किंतु ब्रज ने कभी शंख चक्र गदा नहीं धारण किया। वो यशोदा मैया के बेटे हैं, लाडले बेटे हैं, सखाओं के अपने सखा हैं, जो जूठा खाते हैं उनको खिलाते हैं, कंधे पर चढ़ते हैं, कृष्ण के कंधे पर भी चढ़ते हैं, अरे तरह गाली देते हैं उनको, अपने बराबर समझते हैं, कहते हैं कि तुम हमसे बड़ा कैसा, तुम्हारे बाप को 9 लाख गाय हैं और हमारे बाप को 11 लाख गाय हैं, श्री राम जी ताल ठोक करके कृष्ण को चिढ़ाते हैं, ऐसा अयोध्या में नहीं हो सकता, वैकुंठ में कभी भी संभव नहीं है, इसलिए ब्रज में मर्यादा नहीं, भगवान का भाव नहीं कि कृष्ण भगवान है, वहां पर कृष्ण भूल जाते हैं कि मैं भगवान है, और ब्रजवासी जो कोई भी उनको भगवान नहीं समझता है, और ऐसी प्रेम की विलाय करते हैं, जो सोदा मैया जी का तर्क सुनाई है, सखा लोग भी ऐसे, और उनसे बढ़कर के गोपियां कृष्ण को अपना केवल मात्र प्रियतम समझती है और कुछ नहीं समझती, और उनका पूजन और आराधना कैसे करती है, मान कर लेती हैं, और कृष्ण लाख होकर के मनाते हैं, उनके चरणों में दिखते हैं, इसलिए सेवा कुंज है वृंदावन, सेवा कुंज इसलिए नाम हुआ, यहाँ पर कृष्ण ही सेवा करते हैं, और जगहों में कृष्ण की सभी लोग सेवा करते हैं, किंतु ब्रज का ये स्थान या और भी भांडी इत्यादि स्थान है, राधा कुंड है जहाँ पर कृष्ण अपनी मुरली अपना ये मकुट मोर मकुट सब राधा जी के चरणों में न्योछावर करते हैं, और कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण नहीं शोधन कर सकता, आप अपने खुद ही प्रसन्न हो जाए, ऐसा और जगह कर सकते हैं नहीं कर सकते, यहाँ तक कि राधा जी के चरणों की महावर अपने सिर पर अंकित करके स्टाम्प लेते हैं कि मैं राधा जी की दास हूं, मैं दास हूं, क्यों? यदि गोपियां न रहे तो गोपीनाथ कैसे हो जाएंगे? हो सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए श्रीमान रास रसारम भी बंसी बट्टस्थित वृंदावन का बंसी बट, यहां पर शंकर जी गोपी गोपीश्वर महादेव के रूप में उनकी आराधना करते हैं, वृंदावन में पधारे, वृंदावन की सीमा पर गोपियों ने उन्हें रोक दिया, प्रवेश नहीं कर सकते, शंकर जैसे लोग रोक दिया, उनका पैर नहीं घुस सका वृंदावन में, उनका जमरू अमृत छाला भी रह गया, गोपियों के चरणों में गिर गिड़ाने लगे, गोपियों ने कहा आप योग माया जी की आराधना करें, बहुत वर्षों तक योग माया की आराधना की, योग माया वहां उनके सामने प्रकट की, क्या चाहते हो? शंकर जी ने कहा मैं वृंदावन में प्रवेश करके रात दर्शन करना चाहता हूं, तो इस रूप में नहीं देख सकते, तो आप ऐसी कृपा करें कि मैं उनका दर्शन कर सकूं, ठीक है, उनको पकड़ा और पकड़ करके वहीं पर ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड में लेकर के उनको डुबो दिया, यहाँ रंग जी का मंदिर है उसी के पास में ब्रह्म कुंड है, अब तो लुप्त हो चला है, उसमें लेकर के डुबा दिया और निकाला तो गोपी बन गए, जाओ यही ठहरो और यही चरा चली गई, और ये गोपी तो बन गए, और कुंड में बैठ करके ईशान कोण में जहाँ वो बंसी बट है उसके ईशान कोण में बैठ करके गोपी बन करके देखने लगी, अब रात होगी, कृष्ण ने मधुर तान बजाई और रात आरंभ होने वाला था, किंतु आज किसी का मन नहीं रात में लग रहा, कहा आज कोई मालूम होता है कोई विजातीय कोई व्यक्ति इसमें घुसा है जिसका अधिकार नहीं है, कृष्ण भी खोजने लगे, गोपियां भी ढूंढने लगी, ढूंढते ढूंढते देखा ईशान कोण में कुंज के भीतर में एक नवेली गोपी वहां पर बैठी थी, गोपियों ने उसे पकड़ा, अरे तेरा नाम क्या है, जो मैंने नाम तो बतलाया नहीं, अरे तेरे खसम का नाम क्या है? तो कुछ बोल नहीं सके। अरे तू कौन काम की है, तुम्हारा बाप कौन है, ये भी नहीं बतलाया। अरे तुम्हारी शादी कहाँ हुई है, वो भी नहीं बतलाया। जब नहीं बतला सके, डर गए तो गोपियों ने भूल के मार करके उनके गालों को फुला दिया। शंकर रोने लगे। उस समय में पूर्णिमा जी का स्मरण किया, पूर्णिमा जी वहां पर आई और कृष्ण से और गोपियों से निवेदन किया, हमने इसको वध किया था, इसे यहाँ से देख रही थी, आप लोग कृपा करें जो यहाँ पर स्थान हो यहाँ से देख सके और इसको ये भावना मिल जाए। तब कृष्ण ने और गोपियों ने उनको आशीर्वाद दिया। गोपी सब माने क्या, गोपियां जिनकी ईश्वर है, गोपियों के ईश्वर है, ऐसा नहीं जैसे रामेश्वर, राम जैसे ईश्वर इसके ईश्वर है, ऐसे यहाँ पर होगा क्या? गोपियां ही जिनकी ईश्वरी है, आराधना करने के लिए वहां पर आए। तो कृष्ण और गोपियों ने, राधा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तुम यही रहो और वृंदावन में जो प्रवेश करे उसको तुम अधिकार देना, जब वृंदावन में प्रवेश कर सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। तब से वे हुए इस प्रकार से उनको योग्यता आई। वृंदावनावनी पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेज गोपीश्वर युगांगुली पद में प्रेम प्रयत्न निरुपाधी नमो नमस्ते। हे गोपीश्वर महादेव, आप दया कीजिए कि वृंदावन में प्रवेश हो और राधा कृष्ण युगल की हम सेवा में लग सके, राधा गोपीनाथ जी की सेवा में हम प्रवेश कर सके। ऐसे शंकर जी की अवस्था, ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं, ये लोग समाधि में भी उनके चरणों को दर्शन नहीं कर सकते, किंतु गोपियां कैसी हैं, विशेष करके राधा, उनकी चरण की धूली को यदि मनी मन में ध्यान करें तो कृष्ण अपने आप पर प्रतिभूत हो जाते हैं। ये हैं गोपीनाथ। रास रसारंभी बंसी बट तथा बंसी बज में बंसी बट के छत्र छाया में कोटियों कोटियों गोपियों को लेकर के वहां पर राज कर रहे थे और राज करते करते राधा जी को कुछ अभिमान हो गया, ये गोपियां और मैं एक ही समान हूँ, जो हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं इनके साथ में, तो उनको मान हो गया और उस समय में राधा जी राग छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गई। कृष्ण ने देखा सब कोटि गोपी कृष्ण के चित्त को हरण नहीं कर सकी। कृष्ण देखे राधा जी किधर गई, राधा जी किधर गई। भागवत में स्पष्ट नहीं लिखा किंतु यही भाव है, पहले कृष्ण अंतर्ध्यान नहीं हुए, हुआ कौन, राधा जी को मान में होने से उन्होंने वो राजांतर फैंस हो गई और कृष्ण को ढूंढते राधे 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 करते हुए उनके पीछे पीछे गए। फिर वो मिले गोपियों को, इस सब का वर्णन है वहां श्रीमद् भागवत में, अभी इस विषय में मैं नहीं जानना चाहता। तो राष्ट्रारंभी बंसी बढ़ता था जब कर्षण बेन स्वनई गोपी गोपीनाथ, उन्होंने बंसी बजाई। उस समय के लिए कहते हैं कि जब रासलीला समाप्त हुई, बजरनाथ जी ने वहीं पर गोपीनाथ जी की प्रतीक्षा की, कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के करीब करीब 130 वर्ष बाद में गोपीनाथ जी और गोविंद जी की और मदन मोहन, गोपीनाथ की प्रतीक्षा कहां की, बंसी तट पर गंगा के किनारे। 5000 वर्षों के बाद में जब चैतन्य महापुरुष ब्रज में आए और उसके बाद में रूप सनातन को भेजा, तो गदाधर पंडित जी के ही एक परिवार में मधु पंडित जी थे, वो वृंदावन में आए। वो रोज प्रतिदिन परिक्रमा के लिए पंचक्रोशी जाते थे और यमुना जी में खूब सवेरे में स्नान करते ब्रह्म मुहूर्त में, उनका ये नियम था। एक दिन स्नान कर रहे उनके एक गुरु भाई भी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भी दोनों ने देखा जमुना का किनारा कट रहा है और जो बंसी बट था प्राचीन वो गिर गया जमुना जी के प्रवाह में और वहीं पर सुंदर श्याम सुंदर ये चिक्कन ये गोपीनाथ जी उसी में खंदर से निकले। दोनों ने उनको धोया जमुना जी और धो करके दोनों ले आए जमुना के तट पर और वहीं पर एक पट वृक्ष और लगाया। अब वो पुराना नहीं, अब उसी के पास में अभी जो बंसी बट देखते हैं उसी के पास में और वहीं पर रख करके और वहीं पर उन्होंने छोटा सा एक मंदिर का कुंज सा बनाया और वहीं पर ये गोपीनाथ जी को रखा। बहुत दिनों तक रहे, बाद में वो भी गिर गया तो उसको अब दीक्षा में राधा रमन जी के पास में गोपीनाथ जी को ले आए। अब वहां पर उनका दर्शन है गोपीनाथ जी का। अब वो बंसी बट वाले तो फिर वो गिर पड़ा इसलिए यहाँ ले आए। तो यहाँ पर वो थे किंतु थे कौन? बद्रीनाथ जी ने उस समय में प्रतिष्ठा की 5000 वर्ष पहले। वही मधुपंडक जी ने उनको प्रकाशित किया और आज वो वहां पर थे। आज से करीब 250 वर्ष पहले 300 वर्ष पहले औरंगजेब हिंदुओं के सारे मंदिरों को तोड़ रहा था, अपवित्र कर रहा था। कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ दिया और उसके मलबे से मस्जिद खड़ी कर दी। पुजारी मंदिर के विग्रह को लेकर के बहुत दूर चले गए। उसी तरह से गोविंद जी के मंदिर पर आक्रमण किया, उसके भी बहुत से तल्ले ऊपर के थे उसको तोड़ दिया। केवल ये थोड़े से भाग रखिए जो अभी बचा हुआ है। अब तो उसकी सुरक्षा कुछ लोगों ने की और मंदिर से गोपीनाथ जी कहाँ चले गए? गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद, राधा विनोद, ये सब कहाँ आए? उन्होंने भक्त राजा था यहाँ का जयपुर का, अभी उनका देखो अभी मूर्ति भी लगी हुई है। वो बड़े भक्त थे, उनको स्वप्न दिया और वृंदावन में पहुंचे। एक एक रंग पर एक एक चित्रों को लिया, गोविंद जी का एक, गोपीनाथ जी का एक, मदन मोहन जी का एक, राधा माधव जी का एक, इसी तरह से सब चित्रों को राधा दामोदर इत्यादि को ले आए। और ले करके पहले पहला पड़ाव था काम्यवन में, वही काम्यवन में रहे और वहां पर अलग अलग जगहों में उनको रखा और एक दो दिन रह करके विश्राम करके फिर वहां से चले। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन को यहाँ ले आए और गोपाल जी को जो गोवर्धन में गोपाल जो थे उनको कहाँ ले गए? नाथद्वार के समीप में जंगलों में, झाड़ियों में, पहाड़ियों में जैसा गोवर्धन है उसमें वहां चले। गोपीनाथ गोविंद जी तो वहां रहे जहां भी हैं राजभवन में और गोपीनाथ जी को यहाँ पर पधराया गया और मदन मोहन जी राजा की लड़की बड़ी भक्त थी, राजा से प्रार्थना की अपने बाप से मैया से हमको और कुछ नहीं चाहिए, दहेज में हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस ये हमको मदन मोहन की मूर्ति हमको दे दो। तो मदन मोहन की वो लेकर के चली गई करौली में, आज करौली में वो है और ये दोनों विग्रह अभी भी यहीं पर है और इनकी राजकीय सेवा होती है। हम लोगों का सौभाग्य है जो उसी गोपीनाथ जी का दर्शन कर, किंतु ये समझिए कि गोपी जी नाथ जी कौन है इसके संबंध में मैं कुछ कुछ कल बतलाऊंगा, आज यहीं तक रहे। गौ प्रेमानंदे भवासं प्राप्तो येन प्रथित कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये राधे कल हमने कथा प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी का जीवन चरित्र कुछ बतलाया था। मैंने बतलाया ये कि कृष्ण लीला के समय में वे श्रीमती राधिका जी के प्रिय सुख थे, जिनको अपने कर कमलों में वो लेकर कृष्ण कृष्ण का पाठ पढ़ाती और बड़े प्रेम से सहलाती थी। इसके संबंध में हमने बहुत कुछ बतलाया है, आज उसके आगे की कुछ कथा बढ़ाते हुए बतला रहा है। ये सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही माता के गर्भ से जंगल की तरफ में भगे, क्योंकि माया ने उनका जन्म नहीं हुआ। कृष्ण ने माया को एक क्षण के लिए हटा दिया। माया किसको कहते हैं? जो है नहीं सचमुच जा मां, मां मने नहीं, जो नहीं है उस शरीर को हमने मैं बना लिया और शरीर से संबंधित लोगों को अपना मान लिया और कृष्ण को छोड़ दिया। कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं, गोविंद जी सर्वस्व हैं, उसको तो हमने लिया नहीं, जो नहीं है उसी को अपना मान लिया, उसमें आसक्त हो गए, इसका नाम माया है। संसार में तो रहना ही पड़ेगा, किंतु ये माया नहीं होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी निकल करके भगे। हा पुत्र कहते हुए व्यास जी उनके पीछे चले। क्यों? पुत्र मोह में, वो तो नारायण के अवतार हैं, उनको तो पुत्र का ममता नहीं होनी चाहिए, पुत्र के लिए नहीं रो रहे। एक ऐसा योग्य व्यक्ति जो संसार से पूर्ण रूप से विरक्त है, संपूर्ण रूप से योग्य है, इसको यदि कृष्ण शिक्षा हम दें और भागवत इसको हम सुनाएं, इसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। करुणा के वश प्रौढ़ हो गए, बेटा भी हुआ, मैं उसे कृष्ण भक्ति की राह पर नहीं ला सका, ये तो निर्गुणवादी बन गया। संसार से आसक्ति नहीं है बात ठीक है, किंतु कृष्ण से तो अनासक्ति नहीं होनी चाहिए, कृष्ण में आसक्ति होनी चाहिए। तो देखा जाए हमारे पुत्र को कृष्ण में भी आसक्ति नहीं, वो तो निर्विशेषवादी बन गया, निराकारवादी बन गया और जंगल में जा रहा है। इसलिए उनको क्षोभ और दुख हुआ, इसलिए वो जंगल में जब जाने लगे तो हा पुत्र करके उसे लौटाने की इच्छा करें और उसको श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। निगम कल्प करो बलिदम फलम, और ये विमुख होकर जा रहा है संसार से। अनाशक्ति सब विषयों में ठीक नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम होने पर अपने आप विषयों से विरक्ति हो, ये तो भक्ति के लिए सहायक है। और किसी में उसकी आसक्ति नहीं है तो वो भक्ति में नहीं आ सकता, उसके हृदय का प्रेम जल चुका है। ये लोग नहीं आ सकते कभी भी, जितना भी चेष्टा करो ये लोग नहीं आएंगे। कौन आया? जिनको संसार में अत्यंत आसक्ति नहीं है और विरक्ति भी अत्यंत नहीं है, ऐसे लोग भक्ति के योग्य होते हैं। हरि कथा सुन करके इनका चित्त भगवत प्रेम में भर जाएगा। इसलिए व्यास जी दौड़ रहे थे, किंतु ये अभी रुके नहीं, बढ़ते चले गए। जब आगे पहुंचे तो देखा कुबेर के दो पुत्र या और कोई स्त्रियों को लेकर, रमणियों को लेकर एक सरोवर में नंगे स्नान कर रहे हैं। सुखदेव जी जब उस सरोवर के तट पर पहुंचे तो स्त्रियां जैसी की तैसी रही, खेलती रही, विहार करती रही। जब वो आगे बढ़ गए, जब वृद्ध सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर पहुंचे, व्यास देव, तो उनको देख करके महिलाएं जल से निकल पड़ी और उनको प्रणाम किया। व्यास जी ने पूछा, हमारा नौजवान लड़का 16 वर्ष का, अभी पूरा युवा है, सुंदर है, और उसको देख करके तुमको लज्जा नहीं आई और हमको देख करके तुम्हें लज्जा आई? कपड़े पहन करके, धारण करके और हमारे वहीं उपस्थित करके प्रणाम करने लगे, ऐसा क्या? मुझसे लज्जाई? तुम तो हमारी लड़की की लड़की की लड़की की लड़की हो और हमारा नौजवान लड़का तो पूरा जवान है, इनसे लज्जा नहीं की? उन्होंने कहा, उनकी दृष्टि में लड़की और लकड़ी कोई भेद नहीं है। उन्होंने तो हमारे तरफ में देखा भी नहीं और आप क्यों आकर के हमसे ये पूछ रहे हैं क्यों? तो ऐसे फरों की रखते हैं वो सुखदेव गोस्वामी। इसके बाद में वो जंगल में चले गए। व्यास जी को बहुत सोच हुआ, ऐसा जो वह लड़का इसको भक्ति की तरफ में नहीं ला सका, गोपियों की प्रेम की कहानी में इसे नहीं कुछ बतला सका, तो मैं पिता की, इसलिए वो पिता 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 नहीं, वो मैया मैया नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, वो पति पति कहलाने योग्य नहीं, वो पुत्र पुत्र नहीं, जो भवबंधन से हटा करके कृष्ण के चरणों में प्रेम का मकरंद पान करा सके, इसलिए एक दिन उन्होंने देखा कुछ बहेलिए कुछ पक्षी पकड़ने के लिए जा रहे थे वन में, और वो पक्षी पकड़ करके ले आएंगे तो मैना तोता और गृहस्थों को बेचेंगे, उसे कुछ पैसा मिल आएगा। इसलिए वो आ रहे थे, व्यास जी ने देखा, कहाँ जा रहे हो? तो हम जा रहे हैं पक्षी पकड़ने के लिए वन में। ठीक, एक श्लोक ये पढ़ना, मंत्र बतला देते हैं तो काफी सुख पक्षी तुम्हारे जाल में अपने आप तोते इत्यादि पड़ जाएंगे और तुमको बहुत लाभ होगा। एक मंत्र बतलाता हूं, यह कह करके उन्होंने एक मंत्र उनको मुखस्थ किया, करा दिया। पहले स्मृति सबसे बड़ी तेज होती थी, श्रुति होती थी, श्रुति माने यह वेद विद्या पढ़ी नहीं जाती, वो सुनने से ही हो जाता। एक बार सुन लिया कोई उपनिषद ऊपर से नीचे श्रीमद् भागवत, एक बार व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया तो वो पूरा मुखस्थ हो गया। स्मृति शक्ति बड़ी तेज होती थी। आज यदि हम कोई हमारा एड्रेस पूछे, ये तुम्हारा एड्रेस क्या है, मैं बतलाऊं यदि मेरा नाम श्री भक्ति वेदांत नारायण मारे, जरा फिर से बोलिए तो लिखे श्री भक्ति, इसके बाद आपने क्या बतलाया तो वेदांत, तथा ये जरा मैं लिख लू वेदांत, और तब फिर और आगे से बोलिए तो नारायण। अच्छा, तो आपने ये कहा ना भक्ति वेदांत, और थोड़ी देर के बाद में फिर भूल जाएंगे। पहले स्मरण शक्ति ऐसी नहीं थी, वो बनने जाने पर भी उनकी स्मृति शक्ति बड़ी तेज हुई। ब्रह्मचर्य रहते थे, शुद्ध वातावरण मिलता था, शुद्ध वायु मिलती थी, शुद्ध हवा मिलता था, शुद्ध पानी मिलती। आजकल जयपुर में भी शुद्ध पानी मिलता है कि हमको पता नहीं, मिनरल वाटर लोग पीते हैं, क्यों? हवाएं शुद्ध नहीं। हम आज मैं रामनिवास बाग में गया, वहां पर देखा सीलम में भर करके वो क्या पी रहे थे, वातावरण एकदम दुर्गंधमय बन गया था। और जहां पर कि हजारों ट्रकें चलती हैं और बीस उगल रही, वहां का वातावरण कैसा होगा? तो पहले ये सब नहीं था। ऋषि मुनि बनो जंगलों में रहते थे, तो उनकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज थी। उन्होंने ये मंत्र लिखवा बोल दिया और उन्होंने याद कर दिया, क्या? भरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवास कनक कपिशं वैजयंती चमान रंध्राण वेणुरथ सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम सवर्णम प्रापिशत गीत कीर्ति। कृष्ण का जितना भी रूप का वर्णन श्रीमद्भागवत में वर्णन किया गया है, एक से एक अद्भुत से अधिक, उनमें से ये गोपियों के मुख के द्वारा कृष्ण का ये रूप का वर्णन, गोपियां प्रेम में भरकर कृष्ण का इस रूप को वर्णन करके प्रेम को छके नहीं छाप, तो वो लोग वर्णन कर बरहा पीड़न मोर पंखियां पर लगे हैं, सुंदर मधुर मुरली बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आंखें कैसी सुंदर हैं, वनमाला पैरों तक है, सखा लोग जय हो कृष्ण की जय हो, जय हो कृष्ण की जय हो कह रहे हैं, और अपने शंख चक्र इत्यादि पैरों के जो 19 चिन्ह है उनको धारण किए पृथ्वी पर चल रहे हैं, लाखों लाखों गौवें इत गायें उत गायें सर्वत्र गायें ही गायें चल रही, सखा लोग चल रहे हैं, एक तो नहीं नंद बाबा की 9 लाख गायें, सिद्धांत की गायें कितनी 11 लाख गायें, और ऐसे ऐसे सब गोपों की कृष्ण से कोई कम नहीं, सखा लोग कृष्ण से किसी भांति कम नहीं, उनके पिता भी ऐसे ही नंद बाबा से धनी हैं, कौन विश्वभानु महाराज बहुत धनी हैं। तो इस प्रकार से गायों को लेकर के जा रहे हैं और देवता लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, इस रूप को इसका जबकि गए तो मंत्र पक्षियों को देख करके ये मंत्र उच्चारण करने लगे, तो वो स्वयं के पास में चले आए, बोले जी ये तुमने कहां से पाया, तो हमारे गुरु जी ने ये मंत्र दिया। और सचमुच में उस दिन काफी सुख पक्षी तोते मैना उनकी झोली में पड़ गए। इसने कहा जैसे गुरु जी से पूछना, तो जिसका इतना सुंदर रूप माधुर्य है, जो सखाओं के साथ में चलते हैं, कोटि कोटि गोपियां के मंडल में जो रहते हैं, कैसे कैशोर तिलकम ललाट पटले बस्तक चले कौस्तुम ना सागरे परमक्तकम करतले वेणु करे कंकन सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजय। ऐसे जो कृष्ण हैं गोपी स्त्रियों के साथ में परिवेष्टित होकर के जो चल रहे हैं, ये कृष्ण का तो रूप माधुर्य बहुत अद्भुत है। मैं इसके कुछ गुणों को भी जानना चाहता हूं कि उसका गुण क्या है ऐसे व्यक्ति का। दूसरे दिन जाकर के व्यास जी से कहा, व्यास जी ने और एक मंत्र बतलाया, अहो बकीयम तनकालकूटम जिघन से आप पद पायक अप असाध्वी ले भे गति धात उचित तथो कम वा दयालु शरण। ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कृष्ण जैसे परम दयालु को छोड़ करके अन्य देवता देवी अन्य अवतारों का भजन करेगा। बुद्धिमान वही है जो ऐसे गुण जो एक सेकेंड के अंतर्गत में विश्व का सृजन करने वाले और उसको पुनः प्रलय कर देने वाले और एक सेकेंड में और फिर उसको कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड की रचना करने में जो समर्थ हैं, ऐसे ऐसे ईश्वरों के भी परमेश्वर ये कृष्ण है। कौन ये नंदन मुरलीधारी ये कृष्ण साधारण नहीं। और कृपा कैसी है इसके लिए बदला, ओ बकीयम, ओ जो बकी बच्चों का रुधिर पान करने वाली, नए नए बच्चों का जो जन्म लिया है उसका मांस ऐसे चिबा जाने वाली, महा घोर ये नारकी अपवित्र आचरण करने वाली, और कहा मैया का वेश बना करके आई और कृष्ण को गोदी में लेकर के दूध पिलाने के बहाने उनको मारना चाहा, क्योंकि मैया का वेश बनाया था और बेटा बेटा दो एक बार कहा होगा, बस इसी के लिए उसको धात्री उचित गोलोक बैकुंठ में वृंदावन में उनको धात्री उचित गति। राम ने भी ऐसा नहीं किया, द्वारकाधीश ने भी बहुत दया की है, ऐसी दया नहीं कर सकते, तो और की बात भी क्या। इसलिए जबकि वो जंगल में गए और वो सुखदेव जी प्रतीक्षा कर रहे थे नंग धड़ंग
16 वर्ष की आयु वाले प्रतीक्षा में थे कि देखें उसका उत्तर क्या आता है। उत्तर सुन करके आश्चर्यचकित दौड़ करके अब समय न पूछ करके जी हमारे वो गुरुजी तुम्हारे कहाँ हैं, बस मिलने के लिए दौड़े और हमारे व्यास जी के चरणों में उन्होंने कहा कि आप जहाँ से ये श्लोक लिए हैं उस पूरे ग्रंथ को मैं पढ़ना चाहता हूँ। नरकुंज में प्रतिष्ठित होने पर भी निर्गुण ब्रह्म ने आज व्यास जी निर्गुण ब्रह्म मैंने निराकार निरंजन निर्गुण निर्गुण माने साधारण रूप में कहते हैं कोई गुण नहीं, किंतु निर्गुण और सगुण कृष्ण दोनों हैं। निर्गुण इसलिए है निर्गता प्राकृत गुण आजस्मा, जैसे प्राकृत गुण सब निकले हुए नहीं है, अप्राकृत गुणों की खान है ये कृष्ण चंद्र, सभी गुण उनमें हैं। इसलिए ये कृष्ण साथ ही साथ में निर्गुण भी है सगुण की, इसलिए अप्राकृत सब गुणों के भंडार ये कृष्ण है। दया के पूर्ण अवतार, ऐसा कोई ऐसी कोई दया नहीं कर सकता ऐसा कृष्ण। आप जानते हैं नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र नन धड़ंग नाच रहे थे स्त्रियों के साथ में, नारद जी ने उनको अभिशाप दे दिया, वो वृक्ष होकर के आए और दामोदर लीला ने अपने नहीं छुआ, ओखल जो रस्सी से बंधी हुई है उस ओखल के दोनों सिरे से ये दोनों स्पर्श करके क्या हो गए, माया से तो मुक्त हो ही गए और यहाँ तक कि गोलोक बैकुंठ धाम में मुग्ध कंठ और स्निग्ध कंठ वहां पर कृष्ण का गुणगान करने के लिए उसमें सभा में हरि जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उस गोपियों की और गोपों की सभा में बोलने वाले स्निग्ध कंठ और मधु कंठ बन गए। ऐसी दया कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सुनकर के बस उनके पास में आए, उन्होंने सारी भागवत को पढ़ा, पढ़ते गए और हृदय में उत्साह बढ़ता गया। जब उन्होंने गोपियों की प्रेम की बात सुनी ऐसा कभी जीवन में सुना नहीं। देखिए एक बात बीच में प्रसंग अनुसार मैं बतलाना चाहता हूँ कि इसके पहले कि वो भागवत की शिक्षा करते